ऋषि दुर्वासा और कल्पवृक्ष की कथा। एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि अयोध्या जा रहे थे। तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं। मैं तो ये जानता हूं, किंतु संसारी जनों को आज मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। अपने मन में ऐसा विचारते हुए अयोध्या जाए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ ले भगवान के भवन के 8 चौकों को लांघकर पहले सीता जी के भवन में पहुंचे। तब शिष्यों सहित दुर्वासा को सीता जी के द्वार पर उपस्थित देख पहरेदारों ने शीघ्रता से दौड़कर श्री राम जी को इसकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम उन्हीं दुर्वासा के पास आ पहुंचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर से सहित भवन के भीतर लिया तथा बैठने के लिए सुंदर आसन दिए गए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ने मधुर वचनों में श्री राम जी से कहा कि आज 1,000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है, इस कारण मेरे शिष्यों सहित मुझे भोजन कराइए और इसके लिए मैं आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह विज्ञात रहे कि मेरा यह भोजन जल धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाएगा। केवल एक मुहूर्त में मेरी ही इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विविध प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो मुझे प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने गृहस्थ धर्म की रक्षा चाहो तो शिव पूजन निमित्त मुझे ऐसा पुष्प मंगवा दो जैसे पुष्प यहाँ अब तक किसी ने न देखे हो। यदि यह तुम्हारा किया न हो सके तो मुझसे स्पष्ट कह दो कि मैं इसमें असमर्थ हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब मुनि की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए नम्रता से कहा, भगवान मुझे आपकी यह सब आज्ञा स्वीकार है। तब राम की बात सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होकर कहा, मैं सरयू में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ, शीघ्रता करना। हमारे लिए सब सामग्रियों को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कह देना। राम जी ने कहा, अच्छा आप जाइए स्नान करके आइए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि भ्राता जानकी तथा सब के सब व्याकुल हो राम की ओर निर्निमेश दृष्टि से देखने लगे कि मुनि ने तो इस प्रकार की सब अद्भुत वस्तुएं मांगी है, इसके लिए देखे कि अब भगवान क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल और बिना गाय के उनके लिए किस प्रकार से भोजन प्रस्तुत करते। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र मंगवाया, फिर उस पत्र को अपने बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु वेग से उड़कर अमरावती में इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जाकर उनके सामने गिर पड़ा। उस बाण को देखकर इंद्र व्याकुल हो गए कि यह किसका बाण है। फिर उठकर जो देखा तो उस पर राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंधे पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खुलते ही वह बाण फिर वहां से उड़कर राम के तरकश में आ घुसा। उधर इंद्र ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। उसमें लिखा था, इंद्र स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। आज 1,000 वर्ष के भूखे हुए दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते जो गौ जल अथवा अग्नि के द्वारा सिद्ध न किया हो। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं, जिन्हें कि अब तक मनुष्य ने न देखा हो। मैंने उनकी यह मांग स्वीकार कर ली है। वे सरयू में स्नान करने गए हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही कल्पवृक्ष और पारिजात जो क्षीर सागर से निकले है क्षणमात्र में मेरे पास भेज दो। इसके लिए रावण के संहारक मेरे बाणों की प्रतीक्षा मत करना। यह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तत्क्षण उठ पड़े और कल्पवृक्ष तथा पारिजात को साथ लेकर देवताओं सहित विमान में बैठकर अयोध्या में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्र का स्वागत किया। इंद्र ने राम के पास पहुंच पारिजात और कल्पवृक्ष को राम को अर्पण किया। इतने में ही सरयू तट से दुर्वासा ने अपने शिष्य को राम के पास भेजा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ अन्न अब तक बना कि नहीं, अब तक वैसे ही चिंता मग्न है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरे आज्ञा अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हो तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। तब जो आज्ञा ऐसा कहकर वह शिष्य राम के भवन में आया। देखा तो कल्पवृक्ष और पारिजात से युक्त देवताओं की मंडली उनमें राम में विराजमान है। यह सब देखकर उस शिष्य ने शीघ्र ही दुर्वासा के पास जाकर वह समाचार कह सुनाया। शिष्य की यह बात सुनकर दुर्वासा को आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि श्री राम जी के सुंदर भवन में आ पहुंचे। दुर्वासा जी को आया देख देवताओं सहित राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बिठाकर सीता तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन के हेतु पारिजात के उन पुष्पों को राम ने दुर्वासा के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देख मुनि दुर्वासा ने एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव से उन्हें ग्रहण कर शिव जी तथा अन्य देवताओं की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसी क्षण श्री राम जी ने लक्ष्मण तथा सीता आदि को सब भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों से विभूषित सीता ने कल्पवृक्ष और पारिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और वह प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोली कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिष्यों सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा को तुम संतुष्ट कर दो। तब सीता के इस प्रकार कहते ही कल्पवृक्ष ने पलमात्र में वहां पर रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियों से पूर्ण कर दिया। फिर तो उन सब अन्नों को उर्मिला सहित सीता ने सुवर्ण पात्रों में रखकर दुर्वासा के समक्ष परोस दिया। फिर रामचंद्र से निवेदित दुर्वासा ने अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर तांबूल तथा दक्षिणा ली। और इसी के साथ श्री राम और दुर्वासा मुनि की यह कहानी समाप्त होती है।